खुदावंत के पाक और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि हम बाइबल मुकद्दस में से सीख रहे हैं एक दूसरे के बारे में, बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत से हुक्म मिले हैं जो एक दूसरे के साथ है, जो कलीसियाई हुक्म है, जिसमें ईमानदार ईमानदार के साथ क्या करता है, बर्ताव करता है, जिंदगी बसर करता है, और एक दूसरे से मुराद यानी कि एक ही किस्म के, यानी कि ईमानदार ईमानदार के साथ उसकी जिंदगी का बर्ताव या बसेरा कैसा हो। कल हमने देखा था गलतियों छठा बाब उसकी पहली आयत से कि भाइयों अगर कोई तुम में कसूरवार हो या कसूर में पकड़ा जाए, तुम जो रूहानी हो उसको क्या करो, बहाल करो, बहाल करो और उसका बोझ अपने ऊपर उठाओ। और हमने इस पर गौर की थी कि खुदा यीशु मसीह है जो हमें बहाल करता है, जैसे जबूर 23 में लिखा है कि वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, यानी कि किसी की महरम पट्टी करना, जब वो गुनाह में या जब किसी का हौसला टूटा हो, जब वो शिकस्ता हाल हो, जब उसकी जिंदगी ऐसी जगह पर पहुंच गई हो कि वो कहे कि अब मैं छोड़ रहा हूं मसीहत को, या फिर मेरा हौसला टूटा हुआ कि मैं किसी और के पास जाऊं। तो क्या लिखा है कि अगर कोई किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हलीम हिल्म मजाजी से बहाल करो, यानी कि हलीमी के रवैया से, हिल्म की रूह से। और रूह का फल क्या है, हिल्म। हमने पिछले ही हिस्सा में देखा का रूह का फल क्या है, हिल्म, यानी कि हलीमी से फरोतनी से उस बंदे को सही दुरुस्त राह पर लेकर आना। और यहां तक यहूदा के खत में लिखा है कि अगर तुम किसी गुमराह को, अगर किसी गुमराह को वापस ले आते हो तो ऐसा है कि जैसे तुमने किसी में किसी को आग में से कूद कर निकाल लिया। और वहां पर भी लिखा है कि अपना भी ख्याल रखो ताकि तुमको नुकसान ना पहुंचे, जैसे यहां पर लिखा है कि जब तुम किसी की मदद कर रहे हो, किसी के लिए बरकत का बाइस बन रहे हो, अपना भी ख्याल रखो कहीं तुम भी आजमाइश में ना पड़ जाओ। हम इंसान होते हुए किसी को बहाल करते करते बहुत सफा हो सकता है कि वो तमाम जलाल या जिसे कह सकते हैं अजमत अपने ऊपर लेने की कोशिश करें कि मैंने ये किया है। जैसे बहुत दफा खुदा मौजजात करता है, कौन मौजजात करता है, खुदा, लेकिन बहुत दफा खुदा का नाम आने से पहले लोग क्या कहते हैं, उसने मौजजा किया, फलां पादरी साहब ने मौजजा किया। सो हमें इन बातों से क्या करने की जरूरत है, खबरदार रहने की जरूरत है कि जलाल किसको मिलो, किसके नाम को मिले, खुदा यीशु मसीह के नाम को। बेशक पासबान को, मुबशर को, दुआगो को खुदा इस्तेमाल करता है, लेकिन जलाल किसकी तरफ हो, यीशु मसीह की तरफ, कि वही जलाल के लायक है, वही अजमत के लायक है, उसी की तारीफ हो, उसी ने ये मौजजा किया है, मैंने तो दुआ की है। सो इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि जब तुम किसी को बहाल करो, किसी की मरहम पट्टी करो, तो ये ना कहो कि मैंने तुझ पर एहसान किया है, बल्कि ये खुदावन का फजल है कि उसने मुझे इस्तेमाल किया है। और दूसरी आयत में हमने देखा था एक दूसरे का भार उठाओ, ये क्या है, हुक्मियाना रवैया है, हम एक दूसरे का क्या उठाएं, भार उठाएं, भार उठाएं, एक दूसरे का बोझ उठाएं, एक दूसरे की फिक्र करें और यू मसीह की शरीयत को पूरा करो। तो हमने ये कल सच्चाइयां देखी थी, हमें अपने आप को जांचते रहना है कि जब हम कोई काम करें, खिदमत का कोई भी काम करें, मिसाल के तौर पर नौजवान यहां से सीखना शुरू करेंगे, बहुत से पासबान यही कहते हैं कि जी किसी को मैंने सिखाया और फिर आने वाले वक्तों में उसने क्या किया, मैं या ये बड़ा बात रही, बाकी तो कुछ नहीं। तो हमें जलाल अपने आप को नहीं देना, किसके नाम को देना है, यीशु मसीह के नाम। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है, बहुत से नौजवानों को सिखाया जाता है बाइबल पढ़ना या उनकी मदद की जाती है, और बाद में वो उलटकर पीछे वापस मुड़कर कहते हैं, अरे पादरी मुझे पता। इसलिए हमें क्या रखना है, इस बात का ख्याल, एक दूसरे का बोझ उठाएं, यूं मसीह की शरीयत को पूरा करें। तो आज हम इस बात पर गौर करेंगे, गलतियों 5 बाप उसकी 13 आयत में फिर ये जुमला इस्तेमाल किया गया है, एक दूसरे की खिदमत करो। तो हमें एक दूसरे का भार उठाना है और एक दूसरे की खिदमत करनी है। मेरे साथ देखें गलतियों 5 बाप उसकी 13 आयत। ऐ भाइयों, तुम आजादी के लिए बुलाए गए, ऐ भाइयों तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। मोहब्बत के तौर से हमें क्या करनी है, एक दूसरे की खिदमत करनी है। और आगे क्या लिखा है, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात में पूरा अमल हो जाता है, यानी इस पर, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानक मोहब्बत रख। अगर हम शरीयत को पूरा करना चाहते हैं तो एक बात में अपने पड़ोसी से अपनी मानक मोहब्बत, ये कैसी मोहब्बत नजर आएगी कि अपनी हर एक चीज में अपने पड़ोसी को अपने जैसा जानना, आज के दौर में बहुत मुश्किल है। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारी अपनी ख्वाहिशें, जिसमें हो सकता है कि अगर मैं पेंट कोट पहनता हूं तो दूसरा बंदा पेंट कोट पसंद नहीं करता, ये भी वजह हो सकती है। और बहुत दफा मैं पेंट कोट 2000 का पहनता हूं, दूसरे को मैं किस तरह 2000 का पेंट कोट दू। सो यहां पर अगर हम पूरी शरीयत पर अमल करना चाहते हैं तो अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखें। एक दफा खाने पीने की पहनने की चीजों को अलहदा करके अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखें। इससे पहले कि हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत करना सीखें, हमें अपने आप से मोहब्बत करनी होगी। और ये कैसी मोहब्बत होगी कि खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, इसलिए मेरा इस जमीन पर बहुत अहम करदार है। अगर हम खुद दुआ करेंगे तो हम अपने पड़ोसी के लिए भी दुआ करेंगे, अगर हम खुद अपना भला चाहेंगे तो अपने पड़ोसी का भी भला चाहेंगे, अगर हम खुद नहीं चाहते कि मेरा नुकसान ना हो, हम अपने पड़ोसी का नुकसान भी नहीं चाहेंगे। तो पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखना, ये बहुत ही बड़ा और गहरा भेद है। इस पर तफसील से हम आने वाले वक्त में देखेंगे कि किस तरह अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम इस बात पर गौर करेंगे, एक दूसरे की खिदमत करो। हमें एक दूसरे की खिदमत करनी है। खिदमत यानी कि एक दूसरे के खिदमतगार होना है। जैसे आप पासवान की खिदमत करते हैं, पासवान आपकी खिदमत करता है। तो यहां तक ही ये बात ना रहे, बल्कि आपस में भी, जैसे सलीब, यहां पर कह सकते हैं कि हम हैं, वहां पर खुदा है, और ये दरमियान में खुदावंद यीशु मसीह है। हम जमीन पर हैं, हवा में, यानी कि आसमान और जमीन के दरमियान यीशु मसीह है, और आसमान पर खुदा है। खुदा पर जाने, खुदा तक जाने का वसीला कौन बना, यीशु मसीह। इसी ने कहा ना कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। हमें भी सिर्फ पासवान और अपने तक नहीं बात रखनी, बल्कि एक दूसरे से, एक दूसरे से मिलना है, जुलना है, बातचीत करनी है, दुआ करनी है। हमें पता है कलीसिया जैसी उन बातों को अपनाने की जरूरत है जो आज अनदेखी की हुई है, कि वो रोटी तोड़ने में, रफाकत रखने में, दुआ करने में और तालीम लेने में, ये 4 बातें, ये बुनियादी हमें नजर आती है इब्तदाई कलीसिया में। खाने पीने में एक पर बोझ नहीं डालते थे, सब सब थोड़ा थोड़ा, खाने पीने में, तालीम लेने में, दुआ करने में और रफाकत रखने में वो क्या कहते थे, मशगूल रहते थे। तो हमें भी इन चार बातों को अपनी जिंदगी में देखने की जरूरत है, ताकि हम एक दूसरे की खिदमत करें, ताकि हम देश एक दूसरे की क्या करें, खिदमत करें और मसीह की शरीयत को पूरा करें। आप सबको सामरी की कहानी याद होगी, याद है सामरी की कहानी? नहीं याद तो एक फिर दफा याद कर लेते हैं, मेरे साथ निकालें लूका की इंजील, कि अपने पड़ोसी से अपनी मान मोहब्बत करो। आप सबको याद है कि शरा के एक आलम ने खुदावंद यीशु मसीह से यही बात की थी कि मेरा पड़ोसी कौन है। लूका की इंजील उसका 10 बाप उसकी 25वीं आयत से हम 37वीं आयत तक का ये वाला पढ़ेंगे और जानेंगे कि एक दूसरे की खिदमत या अपने पड़ोसी से अपनी मार मोहब्बत करने का नमूना हमें यीशु मसीह ने दिया है। 25वीं आयत, और देखो एक आलमी शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। ये सवाल माजी में, हाल में, मुस्तकबिल में बार बार पूछा गया है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। और यीशु मसीह ने जहां कहीं भी इस सवाल का जवाब दिया है, जो बंदा चाहता है कि वो हमेशा की जिंदगी पाए, तो यीशु मसीह ने बहुत दफा उनको मुश्किल जवाब दिया है ताकि वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इससे मुझे हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं हो सकती। जहां कहीं भी यीशु मसीह ने कहा है कि हमेशा की जिंदगी के लिए मुझे क्या करना होगा, यूहन्ना की इंजील में कहा गया है कि जिसे खुदा ने भेजा है उसके ऊपर ईमान लाओ। हमेशा की जिंदगी किस तरह है? किसी काम से हमें नहीं मिल सकती, सिर्फ एक बात करनी होगी और वो क्या है, अपना ईमान यीशु मसीह पर रखना। हर एक दौर में, पुराना अहदनामा, नया अहदनामा, आने वाला दौर, मुसीबत का दौर, हर दौर में क्या है, एक ही हल है कि मैं क्या करूं हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। खुदा यीशु पर ईमान ला तो तू हमेशा की जिंदगी को, निजात और तोहफे को मुफ्त हासिल करेगा। 26वीं आयत, उसने उससे कहा तोरेत में लिखा है, उसने उससे कहा तोरेत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया, उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। ये दो बड़े हुक्म हैं बाइबल मुकद्दस में जिनमें तमाम शरीयत के अहकामों पर अमल हो सकता है अगर हम करें। खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत, जब हम खुदावंद खुदा से मोहब्बत करेंगे तो कोई भी उसका हुक्म नहीं तोड़ेंगे। जब हम खुदा से मोहब्बत करेंगे, हम अपनी बीवी से मोहब्बत करेंगे। हाँ वक्त आएगा कि हम नाराज होंगे, हाँ वक्त आएगा कि हम गाली गलौज करेंगे, हाँ वक्त आएगा कि लड़ाई भी करेंगे और मारपीट भी करेंगे, लेकिन जब हम खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल से मोहब्बत रखेंगे तो उसके तमाम हुक्मों पर आसानी से अमल हो जाएगा। और जब हम खुदा से मोहब्बत रखेंगे तो फिर उसमें दूसरा हुक्म क्या है, अपने पड़ोसी से अपनी मानद या अपने बराबर मोहब्बत रखना। तो इसमें बहुत सी बातें आ जाती हैं। 28वीं आयत, उसने उससे कहा तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जीता रहेगा। ये दो हुक्म हैं लेकिन बहुत ही मुश्किल है। तो यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया, तू शरीयत, तू निजात पाना चाहता है, इन दो हुक्मों पर अमल कर। तो आगे उसका जवाब क्या है, उसने उससे कहा तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जीता रहेगा, मगर उसने अपने तई रासबाज ठहराने की गर्ज से यीशु से ये पूछा फिर मेरा पड़ोसी कौन है। बहुत दफा हम सच को जानना चाहते हैं लेकिन उस सच के पीछे क्या होती है, कुंडी होती है, कैसे फंसाऊं। तो यीशु मसीह को फंसाने के लिए, आजमाने के लिए और अपने आप को रासबाज ठहराने के लिए उसने ये बात कही। 30वीं आयत, यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलम से यहू की तरफ जा रहा था के डाकुओं में घिर गया, उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और दमुआ छोड़कर चले गए। अतफाक अतफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतराकर चला गया। ये सुनसी ने काहिन को इस्तेमाल किया है जो कि शरीयत का क्या है, रहनुमा है, सारी शरीयत से वाकिफ है। काहिन ने क्या किया, जो खुदा का बंदा है, खुदा के लिए सब कुछ करता है, वो कुतराकर चला गया। कहीं मैं नापाक ना हो जाऊं, कहीं मैं नापाक ना हो जाऊं और कहीं मेरी पाकीज में फर्क ना पड़ जाए। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतराकर चला गया। लावी यानी कि कहानत का जो काम लावी के कबीले को दिया गया था, वो भी खुदा के अहकाम से, खुदा की सच्चाई से वाकिफ लोग, खुदा से बहुत नजदीकी रिश्ता रखने वाले लोग। तो दूसरा मजहबी जो लीडर आया है वो एक लावी है, वो भी उसे देखकर कतराकर चला गया। लावी लोग जो बड़े कानूनी होते थे, मैं किसी कानून में फंसना नहीं चाहता, ऐसा ना हो कि मुझ पर ही चोरी पड़ जाए, जैसे आज के दौर में भी है, किसी के घर कोई मामला आया, ना 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 मदद लाना जाए, थोड़े तो ना बह जाए, ऐसा ही ना। चलो ये रवैया यहाँ पर लावी का नजर आता है, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया, लेकिन एक सामरी सफर करते हुए वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया। सामरी यरूशलम से यरू की तरफ ये बशंदा जा रहा है जो डाकुओं में घिर गया है, और एक सामरी ने उसकी मदद की। यहूदी दोनों लोगों ने उसकी मदद नहीं की, लेकिन एक सामरी ने मदद की। यहूदियों की नजर में सामरी क्या थे, नापाक, जिसे शूद कहते हैं, कि नापाक हैं, इनको अलहदा किया जाए, ये पूरी बरकत के हकदार नहीं है। जो बहुत दफा जैसे इंडिया में मसीहियों के साथ, पाकिस्तान में मसीहियों के साथ, कई इलाकों में अब किया जाता है, ये मसीही है, इनका ग्लास अलहदा हो, इनके बर्तन अलहदा हो, हारूनाबाद या दूसरे इलाके जो भी बैकवर्ड इलाके हैं, इनकी शेव ना की जाए, इनके बाल ना काटे जाए। सामरी ने देखा और वहां पर उसे देखकर क्या किया, उस पर तरस आया। और यहां पर खुदा यसुम सी बयान करते हैं, और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मरहम लगा कर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगीरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर भटियारे को दे दिए और कहा, इसकी खबरगीरी करना और जो कुछ इस पर खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूंगा। और यीशु मसीह ने सवाल किया, इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में गिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? तेरी अकल के मुताबिक, यीशु मसीह ने कहा, कौन तेरा पड़ोसी ठहरा, इन तीनों में से कौन? तो बंदे ने जवाब दिया, उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही। तो हमें एक दूसरे की खिदमत करनी, हमें एक दूसरे की खिदमत करनी है, हम इस सामरी की कहानी से सीख सकते हैं। कभी आपने सवाल किया अपने जहन में कि जो राह के किनारे में गिरा हुआ बंदा था वो कौन था? कभी आपने ये सोचा है कि हो सकता है कि जो बंदा डाकुओं में गिरा हो वो ही खुद कहानी बता रहा हो? इन बातों पर सोचने की जरूरत है कि यीशु मसीह बड़े वाजिया तौर पर इस बात को बयान कर रहे हैं, हो सकता है कि ये वाकया यीशु मसीह के साथ हुआ हो, कि उसके अपनों ने उसे नहीं संभाला लेकिन किसी सामरी ने उसकी क्या की। इसमें से बहुत से हम अंदाजाना तौर पर सबक सीख सकते हैं, क्योंकि ये तमसील नहीं है। तमसील वो है जो कि एक महमा, जिसे कहते हैं कि गोलमोल बात, मौजूदा हिसाब किताब को देखकर सुनाई जाए, लेकिन यहां पर ये क्या है, एक सच्चा वाक्य है। जब हम इस बांधदारी को देखते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने जवाब में कहा, एक आदमी यरूशलम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में गिर गया। एक आदमी कौन हो सकता है, अंदाजा लगा सकते हैं, हो सकता है यीशु मसीह। जिसके ऊपर ये बीती है, जिसे कहते हैं मन बीती वाला जाने या तन बीती वाला ही जाने। तो हो सकता है कि यसुम सी पर बीती हो, यसुम सी ने सिशरा के आलम को इस कहानी के बारे में बताया। शरा के आलम जिसे वकील भी कह सकते हैं, आलम शरा, वकालत करने वाले लोग बहुत ज्यादा शरीयत को और दूसरी बातों को समझदारी के साथ पाबंदी के साथ मानने वाले लोग। आज के दौर में भी हो सकता है कि यस्सुम सी कहीं पर हमें नजर आए। और खुदा की ख्वाहिश तो ये है और खुदा का कलाम तो यही कहता है कि यस्सुम सी हमें रहता है। बहुत दफा हम भूल जाते हैं। याद है यसुम सी ने शिगिर्दों से कहा, अगर तुमने किसी बीमार को, किसी जख्मी को, किसी भूखे को, किसी नंगे को, किसी कैदी को उसका हाल चाल पूछा, उसकी रहनुमाई की, उसकी मदद की, तो तुमने मेरे ही साथ किया। यसुम सी हाथ बेशक वो आसमान पर है लेकिन जाहिरी तौर पर नहीं, हो सकता पोशीदा तौर पर वो हमारे दरमियान कहीं में किसी में से होकर अपना काम करना चाहता हो। और बहुत दफा हम कहते हैं मैं नापाक ना हो जाऊं, कतरा कर निकल जाते हैं। अगर हम खिदमत के असूल को जानना चाहते हैं तो यीशु मसीह की जिंदगी में सादा तौर पर किसी को गंद में से निकालने के लिए उस गंद में उतरने की जरूरत है। एक बहुत खूबसूरत फिल्म जो बनी थी, उस फिल्म में एक बंदा टोए में गिर गया। तीन लोग जो तीन मुख्तलिफ मजहबों को जाहिर करते हैं, सब ने आकर किया कहा कि तू यहाँ पर दुआ कर, और ऐसा महसूस करके ये टोया है ही नहीं। दूसरे ने आकर कहा कि तू रोजे रखने शुरू कर दे और तू यहाँ पर मर जाएगा, लेकिन यहाँ पर ही तुझे क्या मिलेगी, नहीं जिंदगी मिलेगी। और तीसरे ने आकर कहा कि ध्यान ज्ञान लगा ले और अपनी दर्द को भूल जा और यही समझ के तू रू है। और चौथा खुदावंद यसुम सी उस फिल्म में जाहिर किया गया। खुदावंद यसुम सी ने उस बंदे से जो टोए में गिरा हुआ था उससे पूछा, क्या तू बाहर निकलना चाहता है? कोई यसुम सी ने और बात नहीं उस फिल्म में कही गई, यही पूछा क्या तू बाहर निकलना चाहता है? तो उस टोए में गिरे हुए बंदे ने कहा हाँ। तो इस फिल्म में दिखाया गया कि यीशु मसीह ने रस्सी फेंकी और जमीन के नीचे उतरा। उस टोए में उतरकर उस अधमुए बंदे को अपने ऊपर उठाया और उसे बाहर खींच लिया। और जब वो बाहर आया तो रोशनी में क्या दिखाई गई है कि सलीब के साथ वो रस्सा बंधा हुआ है और वो बंदा उस सलीब के पैगाम के वसीला से बच गया। बहुत दफा किसी को बचाने के लिए गंद में उतरने की जरूरत पड़ती है। ऐसा ही खुदा ने किया। इस नापाक दुनिया में अपने बेटे को जो पाक था क्या कर दिया, जमीन पर भेज दिया कि वो हम सब की खातिर क्या बने, गुनाह बने। हमको गुनाह बनने की जरूरत नहीं है, हमको गुनाह की माफी का पैगाम बनने की जरूरत है। इतनी सी ये कहानी है। सो हमारा पड़ोसी, अपने पड़ोसी की खिदमत करो। ऐ भाइयों, अपनी आजादी का फायदा ना उठाओ बल्कि एक दूसरे की खिदमत करो।